अभी जो आपने बताया था ना, देव शरीर और नारकी शरीर असमान जातीय नहीं है, कहाँ किसने बताया? शरीर को असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं कहेंगे, शरीर तो समान जाति द्रव्य पर्याय ही है, परंतु जब हम मनुष्य पर्याय कहते, देव पर्याय कहते, जीव और शरीर मिलकर। दूसरी बात, मात्र पुद्गल से संश्लेष संबंध नहीं है, किसी भी पुद्गल के साथ संश्लेष संबंध नहीं होता। कौन से पुद्गल? हाँ, जो कर्म जो है, कर्मों के साथ जो बंध हुआ है, क्योंकि जिन प्रदेशों में जीव के जो प्रदेश है, उन्हीं प्रदेशों में अनंतानंत अन्य पुद्गल परमाणु भी रहते हैं, उनके साथ कोई संश्लेष संबंध नहीं पाया जाता, क्योंकि जो कारमाण वर्गणा रूप से ही पड़ी है, अन्य तेजस वर्गणा रूप से भी पड़ी है, अन्य जो विसरसोपचय पड़े हैं, उनको जीव का कोई संश्लेष संबंध नहीं कहलाता। ख्याल में ही बात, हम शुरू करेंगे अभी। ये समय 9:45 तक है कि 9:30 तक है समय? अच्छा, पौने दस तक है। अच्छा ठीक है, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्। जम जस जम्मि देशे जेन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादम जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा एवं जोणिश्चयदो जानदि दौवाणि सौपज्जाये सो सद्दिट्ठि सुत्थो जो संकदिसो हुकुदिट्ठि। जिनागम के आधार से कारण और कार्य का जो रहस्य है, जो मर्म है, उसे हम देखने जा रहे हैं। हमने अभावों की तो चर्चा की है, अब हम निमित्त के बारे में जानने जा रहे हैं। कार्य होता है तो कार्य किसे कहना? हाँ? जो पर्याय है, गुण जो परिणमित होते हैं, या हम द्रव्य का भी परिणमन कह सकते हैं, उसी को कार्य कहते हैं। तो ये कार्य के कारण कितने होते हैं? कल हमने देखे थे, 2 होते हैं। कार्य कब होता है, कितने घंटे के बाद होता है? प्रति समय होता है, और प्रति समय उसके दोनों ही कारण विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से 2 कारण? हाँ, निमित्त कारण और उपादान कारण। अभी अभी आपने निमित्त कारण की परिभाषा भी सुनी है, कौन सुनाना चाहता है? निमित्त किसे कहते हैं? जिसने कल नहीं उत्तर दिया, ऐसा कोई है नए स्टूडेंट? हाँ बोलो। हाँ बहुत अच्छा, अनुकूल होने का आरोप आ रहा है। देखो क्या बात होती है, कौन कौन से द्रव्य प्रति समय परिणमित होते हैं 6 द्रव्यों में से? सभी। तो सभी जो अनंतानंत द्रव्य है, वो परिणमन कर रहे, अवस्था रूप परिणमित हो रहे, कब से? अनादि से। तो अनादि से सभी द्रव्यों की अपनी अपनी अवस्था चल रही है। अभी हम वर्तमान काल में विचार करेंगे तो प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी अवस्था स्वयं के उपादान कारण से हो रही है। बात सही है? कब से परिणमन चालू है उसका? अनादि से। और अभी वर्तमान में कौन सी पर्याय हो रही है उसके अपने उपादान से जो योग्यता वाली पर्याय वही हो रही है। अब मान लेते ये दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, इसके अनादि की पर्याय होते 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 वर्तमान में विशिष्ट पर्याय हुई, इस द्रव्य की भी अनादि से होते होते वर्तमान में विशिष्ट अवस्था हुई, तो क्या लगता है इस कोई इसको हम ए कहेंगे इसको बी कहेंगे, तो ए द्रव्य की जो पर्याय हो रही है वो क्यों हुई उसके अपने उपादान से, बी द्रव्य की पर्याय हो रही है क्यों हो रही है उसके अपने उपादान से। हमें क्या लगता है क्या भासित होता है कि जो ए द्रव्य की पर्याय में अनुकूल कौन सा लगता है द्रव्य, ये बी द्रव्य नहीं उसके पर्याय, क्योंकि द्रव्य तो वहां पड़ा है उसकी विशिष्ट पर्याय उसमें अनुकूल भासित होती है तो उस पर क्या आरोप आता है, ये ए का ये बी है वो निमित्त है, निमित्त तो वहां उपस्थित है अपने स्वयं के कारण से उपस्थित है, निमित्त से कार्य नहीं हो रहा है, निमित्त जो है जो निमित्त रूप जो द्रव्य हम कह रहे हैं वो तो अपना स्वयं का उपादान कार्य कर रहा है, उसमें भी कार्य तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसको हम निमित्त का आरोप दे रहे हैं वो द्रव्य भी अपने उपादान कार्य रूप से स्वयं परिणमित हो रहा है, परंतु हम ए द्रव्य के पर्याय की बात कर रहे हैं, ए द्रव्य की पर्याय में बी द्रव्य की पर्याय कुछ नहीं करती है, तो क्या हो रहा है वो मात्र उपस्थित है और हमें ऐसा लगता है कि ये इसमें अनुकूल है, क्योंकि प्रत्येक समय में अनंत द्रव्य अपने अपने उपादान रूप से परिणमन कर रहे हैं तो उसमें किसी एक द्रव्य के पर्याय में अन्य द्रव्य की पर्याय अनुकूल लगती है तो हम उसको कहेंगे ये उसका निमित्त है। जीव कितने हैं, अनंत, और पुद्गल अनंत अनंत, वो जीव और पुद्गल गमन करते हैं, कौन गमन कराता है बोलो, गमन कौन कराता है, स्वयं गमन करते हैं, क्यों उनमें उपादान शक्ति है स्वयं गमन करने की, तो हम उस निमित्त किसको कहते हैं, धर्मद्रव्य। धर्मद्रव्य की परिभाषा क्या है, हाँ देखो वहां भी निमित्त का स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को, ये परिभाषा हमने याद की थी शुरू में ही, परंतु तब हम कोई निमित्त उपादान नहीं समझते थे, उस परिभाषा में मैं क्या कहा है, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल ये उसकी उपादान से परिणमन कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है उसमें, हाँ गमन करने में सहायक, सहायक कहो उपकार कहो मदद कहो, ये क्या है सारे निमित्त के पर्यायवाची शब्द है, निमित्त का ही अर्थ होता है कि वो कार्य में कुछ नहीं करता, यदि कार्य में कुछ करे तो उसको हम उपादान कह देते, उसको निमित्त कहने की क्या आवश्यकता थी, उसको निमित्त ही इसलिए कहते हैं कि बस उसकी उपस्थिति है परंतु वो तो अपना स्वयं का कार्य कर रहा है, परंतु यहां अन्य जीव का कार्य वो नहीं कर रहा है, धर्म द्रव्य स्वयं में परिणमित हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें कितने गुण है धर्म द्रव्य में बोलो, अनंत गुण है ना, तो उनका अनंत गुणों का परिणमन उनके स्वयं के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर भी हम जीव की अपेक्षा बात करते हैं तो जीव और पुद्गल में वो गमन में हम निमित्त कहते हैं, उसकी बस वहां उपस्थिति है, गमन करना या नहीं करना जीव की इच्छा के अधीन है कि नहीं, क्यों क्या कहते हैं, जीव ने इच्छा की इसलिए गमन होता है कि नहीं बोलो, हाँ आप क्या कहते हैं, तो पुद्गल ने भी इच्छा की इसलिए गमन होता होगा, इच्छा से गमन होता है, आप बहुत चाहते हैं कि मैं क्लास छोड़कर चला जाऊं पर क्या करें अभी अनुशासन है रखना पड़ता है, इच्छा से गमन होता है कि नहीं होता, इच्छा क्या है कौन से गुण की पर्याय है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है और उसके कारण गमन हो जाए, तो जब अरिहंत अवस्था में से मुक्त दशा प्राप्त होती है तो उनको ऊपर सिद्धालय में जाने की इच्छा है तभी तो गमन होता होगा, क्यों इच्छा से गमन नहीं होता, हाँ कभी कभी क्या होता है अभी हमारी इच्छा भी चल रही है और हमारा चलना भी होता है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हम इच्छा के कारण गमन करते हैं, ये बोलना तो इच्छा से होता होगा कि नहीं, देखो मैं हल बहुत धीमे स्वर में बोल सकती, देखो मैं ऊंचे स्वर में बोल सकती, इच्छा से हुआ कि नहीं परिणमन, जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, लिखा है ना प्रणमल जी साहब ने, क्यों? उसकी इच्छा के और शरीर के परिणमन के ऐसे, इसको कौन सा संबंध कहा? निमित्त नैमित्तिक संबंध। कल हमने देखा था कुमार को निमित्त कहा और घड़े को उसका नैमित्तिक कहा, ऐसे ही जीव के और शरीर के, जीव निमित्त और शरीर नैमित्तिक, शरीर के कार्य, कहीं कहीं शरीर का कार्य निमित्त और जीव, जीव में जो कार्य हो रहा है वो नैमित्तिक, कभी ऐसा देखा है? शरीर निमित्त है और जीव में जो कुछ कार्य हुआ वो उसका नैमित्तिक, कैसे? शरीर में चोट लगी तो जीव को दुख होता है, क्यों? अरे शरीर की बात क्या, ये साड़ी फट गई तो भी दुख होता है, क्यों होता है? अपनापन है, मिथ्यात्व के कारण। जैसे अभी कोई सोया है पलंग पर सोया है और नींद में लुढ़क जाता है, तो शरीर गिर गया तो जीव तो ऊपर ही रहेगा कि नहीं, कि वो भी गिर जाएगा, तो ये हम शरीर के निमित्त से जीव का कार्य हुआ क्यों? तो ये ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। देखो जहां हमने तो अभी अभावों की तो चर्चा की है, पहले हमें भी ऐसा लगता है जब अपना अभ्यास नहीं है तत्व ज्ञान का, और जिसके निमित्ताधीन दृष्टि तो अनादि से पड़ी ही है और शास्त्र का स्वाध्याय करके भी निमित्ताधीन दृष्टि पड़ी रहती है, वो तो शास्त्र का कथन दिखा के, देखो यहाँ लिखा है कि नहीं, ये निमित्त से कार्य होता है कि नहीं होता? गणधर नहीं आए थे तब तक दिव्य ध्वनि नहीं खीरी थी, बात सही है कि गलत है? ये सुना है कि नहीं सुना? महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया किस दिन हुआ? हाँ, आषाढ़ के वैशाख, दिव्य ध्वनि कब छूटी? छूटी हाँ, श्रावण एकम आज है ना, कब है? कल। हाँ, आज तो पूनम है, और उनको 66 दिन पहले केवल ज्ञान हुआ था, समोचरण लगता था, लोग आते थे लोग सुनने के लिए, फिर भी दिव्य ध्वनि नहीं छूटी, तो क्या हुआ? इंद्र महाराज को विचार आया ये क्यों नहीं छूट रही, फिर अवधि ज्ञान लगाया, तो पहले क्यों नहीं लगाया अवधि ज्ञान? हाँ, विकल्प ही नहीं आया, क्यों? जब कार्य होना है उसी समय निमित्त हाजिर होता है, निमित्त आया इसलिए कार्य नहीं हुआ। तो वो तो स्टोरी आपको पता है कथा, वो इंद्रभूति के पास गए, वो सब अपने शिष्यों के साथ आ गए, वहाँ उन्होंने पूछा था ना ये 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ क्या होते, 5 अस्थिकाय क्या होते, उन्होंने कहा मैं आपके गुरु के साथ चर्चा करूँगा, आपके साथ नहीं, क्योंकि अपनी पोल पट्टी खुल जाए तो क्या करे। तो वहाँ आए और उनको मानस स्तंभ देख कर मान गल गया। ये गणधर को सम्यक दर्शन कब हुआ? गणधर तो बाद में बने, इंद्रभूति को सम्यक दर्शन कब हुआ? मानस स्तंभ देखकर, बिना देशना के हो गया? महावीर की देशना के, देशना से उनको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? मेरा प्रश्न क्या है, महावीर भगवान की वाणी सुनकर इंद्रभूति को सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि गणधर हो गए तभी उनकी हाजिरी में वाणी छूटेगी कि नहीं छूटेगी? अभी हम निमित्त की ओर से बात कर रहे हैं। जब वो महावीर स्वामी के सामने गए, वहां वो स्वयं दीक्षित हो गए, उनके सामने दीक्षा धारण की, छठा सातवां गुण स्थान प्रकट हुआ, मन परे ज्ञान भी प्रकट हुआ, सारी जो बुद्धियां, एक केवल ज्ञान रिद्धि छोड़कर बाकी सभी बुद्धि रुद्धि उनके प्रकट हो गई, तब जाके भगवान की वाणी छूटी। ऐसा एक नियम है, गणधर वे ही बनते हैं जो उसी तीर्थंकर के सामने दीक्षा जिन्होंने ली है, पहले से दीक्षित मुनिराजों के सान्निध्य में वे गणधर नहीं बनते, यानी उनकी वाणी नहीं छूटती है। क्या कहा? जिसने वहां उस तीर्थंकर के सामने जाके दीक्षा ली होगी और वहां वो मुनिराज बने हैं, वे ही गणधर बनते हैं। देखो हमने तो स्टोरी सुनी है ना, जो पार्श्वनाथ के गणधर के डायरेक्ट शिष्य थे, मस्करी गोसा, नाम सुना है नहीं सुना? वो तो वहां हाजिर थे समोशरण में, महावीर भगवान के समोशरण में वो मस्करी गोसाल हाजिर था। वो तो मुनिराज के मुनि के अवस्था में थे और उनके निमित्त से तो वाणी नहीं छूटी। ये इंद्रभूति गौतम जो अन्यमति था, वैदिक ब्राह्मण था, वहां से आया दीक्षा धारण के और उसके निमित्त से वाणी छूटी, तो कितना गुस्सा आना चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान की वाणी छूटी तो आनंद होना चाहिए कि गुस्सा आना चाहिए? इनको तो गुस्सा आ गया और बाहर चले गए और अपनी अन्यमत की स्थापना कर दी उन्होंने। तो वाणी इनके निमित्त से नहीं छूटी, इसलिए गुस्सा आया कि नहीं आया? गुस्सा क्यों आया हम पूछते हैं, गुस्सा क्यों आया बोलो? आपको गुस्सा क्यों आता है? वो मस्करी गोशाल को छोड़ दो, किसी को गुस्सा क्यों आता है? मिथ्या मान्यता के कारण। मान्यता ये श्रद्धा गुण की पर्याय है और गुस्सा ये चारित्र गुण की पर्याय है। तो मिथ्या मान्यता के कारण गुस्सा आता है कि नहीं आता? हाँ बोलो, क्यों आता है गुस्सा? आप बोलो। हम कहेंगे ना अशुद्ध उपादान से आ रहे हैं, अभी हम तो समय सार की बात नहीं कर रहे, वहां तो कहेंगे ज्ञानी को आता ही नहीं, वो उसका परद्रव्य है, अपेक्षा सहित बात है हो। अभी तो हम द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, व्यवहार नहीं का भले कथन हो, ज्ञानी की अपेक्षा उसको कहेंगे ये उसका है ही नहीं है। अभी सुन के आए ना आप, गुरुदेव की वाणी अभी सुनी आपने, तो उसमें क्या कहा था? वो उसका है ही नहीं, वो पुद्गल का है, अपेक्षित कथन है वहां पर, क्योंकि हमें शुद्धात्मा की बात करनी है। अब यहां जो हम बात कर रहे हैं द्रव्य का परिणमन की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तो किसी को गुस्सा क्यों आता है? तो कोई कहेगा हमारे बच्चे बहुत तकलीफ देते हैं, हमारा पड़ोसी हमें बहुत तकलीफ देता है, क्या करे, स्कूल में कॉलेज में जाते तो टीचर बराबर नहीं पढ़ाते, तो हमें बहुत गुस्सा आता है, क्यों? बात सही कि नहीं? तो उसको कहेंगे चारित्र मोहनीय कर्म है ना, क्रोध नाम क्रोध जो कर्म है उसका उदय होने से गुस्सा आता है। तो वो निमित्त है कि उपादान है? क्रोध कर्म का उदय निमित्त है कि उपादान है? तो जीव में उसमें कौन सा अभाव है? हाँ, अत्यंत अभाव। तो कर्म के कारण गुस्सा आया कि नहीं आया? तो जीव की अपनी स्वयं की योग्यता से हम उसको कहेंगे अशुद्ध उपादान, परंतु पहले भी पहले उसको स्वीकार करेंगे। जब हम अध्यात्म की बात करेंगे तो उसको हम पुद्गल का कह देंगे, परंतु अभी पहले में उसको नए की अपेक्षा स्वीकार तो होगा कि नहीं होगा? कर्तृ नय से तो ज्ञानी को भी कहा है वो राग का करता, सुना है कभी? नय हुए कि नहीं यार? 47 नय हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, अच्छा हो गए, तो सुना है कर्तृ नय? उसको कौन सा दृष्टांत दिया है कर्तृ नय में? रंगरेज की माफक, सुना है कि नहीं सुना? ये रंगारा होता है ना, उसके माफक ऐसा कहा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अपना विषय चलाएंगे। देखो ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध होते, देखो तत्वार सूत्र में भी जो सूत्र है, छह द्रव्यों का आपस में कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, आपको कोई सूत्र पता है निमित्त का संबंध बताने वाले सूत्र तत्वार सूत्र में? धर्माधर्म, हाँ बोलो, हाँ, परस्परोपग्रह जीवानाम, क्या करता है? एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है ना, और जीव को दूसरे जीवों को उपकार करना चाहिए, ये बात सही है? सही है ना, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, बराबर है ना? क्या सही है बात? क्या निमित्त अपेक्षा करना चाहिए? तो उपकार का अर्थ क्या है? सहायता है ना, क्या निमित्त? देखो उसके पहले वाले वहां पांच सूत्र हैं, उसके पहले का पुद्गल और धर्माधर्म का क्या होता है? बोलो अभी गति स्थिति हाँ धर्माधर्म यो हो उपकारः। उपकारः का अर्थ क्या है? वो निमित्त है, वो कर्ता नहीं है। वैसे ही आकाश का क्या है? आकाशस्य अवगाह, अवगाह नहीं तो ये आकाश का वो निमित्तपना है ना, अन्य द्रव्यों के लिए अवगाहन देना, ये निमित्त की ओर से बात हो रही है उसके। ऐसे ही सभी द्रव्यों का आपस में कैसा निमित्त है उसकी बात चलती है। पुद्गल भी जीव का निमित्त है, उपकार करता है। कौन सा उपकार? जन्म मरण, मरण करना ये भी उपकार हुआ। तो अपकार किसको कहेंगे? यदि हम जो लौकिक में जो हम उपकार कहते हैं, यदि उसी वही बात हम यहां लागू करते हैं, लौकिक में भी यही शब्द आते हैं और यहां अलौकिक में भी वही शब्द आते हैं। लौकिक में भी हम निमित्त की बात करते हैं, उपकार की बात करते हैं, अन्य अन्य बात करते हैं, परंतु यहां तो हमें शास्त्र शुद्ध परिभाषाएं समझना चाहिए। ये जब सारे घोटाले हो रहे हैं वो सही परिभाषा नहीं समझने से हो रहे हैं। तो निमित्त की परिभाषा तो अभी हमने देख ली है। निमित्त को ही उपकार भी कहते हैं। पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है तो उसको कहते हैं ये पुद्गल का उपकार है। जीव के सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, ये जो पुद्गल का उपकार है, ये समझते हैं, ये द्रव्य प्राण है। जब तक है तब तक जीव, हम उसको कहेंगे ये जीवित है। जीव कब मरता है? हाँ? जीव नाम क्यों पड़ा? जो अनादि से जीता आया है, अभी वर्तमान में भी जी रहा है और अनंत काल तक जो जीता रहेगा उसको हम जीव कहते हैं। तो जीव उसी को कहते हैं जिसका कभी मरण ही नहीं होता है। तो मरता कौन है? जीव के शरीर, शरीर मरता है। वो जिंदा कब था तो मरने लगे? शरीर जिंदा कब था? अभी भी ये क्या है? बॉडी है, डेड बॉडी। हम यहां से निकल जाएंगे तो क्या कहेंगे? बॉडी उठाओ। अभी क्या है? अभी भी ये कलेवर है, मराठी में करते मुर्दा कहें। हम ऐसी बात करते हैं ना तो हमें लोग सलाह देते हैं, ऐसी अशुभ बातें यहां मत करो। कैसी? कि इसको आप कलेवर कहते हो, इसको मुर्दा कहते हो, ये बात अच्छी नहीं है, सुनने को अच्छी नहीं लगती। जो सच्ची है वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमने इसी को ये मैं हूं मान लिया है। और फिर इसको अभी तो मुर्दा घोषित मत करो, जब आप चले जाएंगे तब हम इसको मुर्दा कहेंगे। परंतु तो अभी मान लो ना कि इसमें कुछ जान है ही नहीं है, हमारे कारण इसको अभी जीव कह रहे या सजीव कह रहे। हम यहां नहीं होते तो इसको कोई जीव कहता? क्यों? इसकी कुछ वैल्यू होती? तो हमने तो अभी तक माना ही नहीं ना, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण जहां जीव विद्यमान है वहीं पर यह शरीर भी है और उसके जो कोई कार्य दिखाई देते हैं तो हमें ऐसा लगता है यही मैं हूं, मैं इसके कार्य कर रहा हूं। परंतु दोनों की भिन्नता, दोनों में जो अत्यंता भाव है उसको भी हमें पहचानना चाहिए। देखो ये तो अभी हमने उपकार की बात देखी। यहां पर हमने ये बात देखी ना, निमित्त से कार्य नहीं होता फिर भी निमित्त की हाजिरी होती है, उपस्थिति होती है। कल हमने देखा था घड़ी देखकर ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, कितने बजे, ये मैंने सामने वस्तु आपको दिखाई इसलिए ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, नहीं हुआ। तो मैं अभी इसको ऐसा ढक देती, आपको ज्ञान हो रहा है? क्यों? ज्ञेय से ज्ञान होता है कि नहीं होता, ये बात हमको नक्की करनी है। क्यों नहीं होता? हमें तो सिद्धांत चाहिए जो हमने सीखे हैं। ज्ञेय से ज्ञान क्यों नहीं होता है? हाँ, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है। हम कहेंगे भगवान को हम जान रहे हैं, भगवान में तो ज्ञान है कि नहीं है? भगवान को ज्ञान है कि नहीं है? भगवान में भी ज्ञान है तो हम भगवान को जान रहे हैं, तो उस ज्ञेय में तो ज्ञान है ना, तो उसके कारण तो हमें ज्ञान होगा कि नहीं होगा? हाँ, दो ज्ञेयों में अत्यंत अभाव है। अरे हम अभी निमित्त नैमित्त की बात देख रहे हैं ना, ज्ञेय निमित्त है और ज्ञान जो ज्ञान की पर्याय होती है वो उपादान से होती है, ज्ञान गुण उसका उपादान है, और वहाँ गेय में जो कोई पदार्थ है, भले जीव हो या पुद्गल हो या अन्य कोई पदार्थ हो, वे गेय है। तो गेय वहाँ ज्ञान में उसको हम निमित्त कहेंगे। तो निमित्त के कारण ज्ञान होता है कि नहीं होता? ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान की अपनी योग्यता से होता है। अभी आपने गुरुदेव के प्रवचन में देखा, सुना आपने क्या, राग है पर्याय में, राग के कारण ज्ञान होता है कि नहीं होता? ज्ञान की अपनी स्वपर प्रकाशक योग्यता ऐसी है, स्वयं की योग्यता से राग को भी जानता हुआ वो ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। अभी आपने बात जो सुनी है, तो ये हम उसको अभी हम निमित्त निमित्तिक भाषा में उसको सीखेंगे। देखो लौकिक में भी हमें जो ऐसा लगता है, देखो अभी हमारा तो ज्ञान अच्छा खासा चल रहा है, हम किसी डॉक्टर के पास गए और उसने एनेस्थेसिया दे दी, कोई इंजेक्शन लगाया तो बेहोश जैसे हो गए हम, उसने ऑपरेशन भी कर डाला तो हमें पता नहीं चला। देखो ज्ञान की हीनता हो गई कि नहीं हो गई? वो एक इंजेक्शन लगाया तो उसके कारण हम बेहोश हो गए कि नहीं हो गए, बोलो क्या कहते हैं? ये जो इंजेक्शन लगाया उसके कारण एक हमें बेहोशी हो गई कि नहीं, ज्ञान की हीनता हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? हाँ, ये निमित्त का कथन है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु जीव में उसकी ज्ञान के पर्याय में और जो कोई एनेस्थेसिया है, जो कोई इंजेक्शन, उसमें कौन सा अभाव है, बोलो? अत्यंत अभाव है। शरीर की कोई जो ऐसी अवस्था हुई उसमें और इंजेक्शन में अन्योन्याभाव, फिर भी ज्ञान की हीनता हुई ना, तो हम पूछेंगे किस कर्म के कारण हुई? ज्ञान अधिक था, अच्छा खासा जान रहा था, अभी हीन रूप परिणमित हुआ तो क्या हुआ वहां? हाँ, ज्ञानावरण कर्म का जो कोई क्षोभक्षम था तो उसमें तो आवरण और बढ़ गया, इसलिए ज्ञानहीन हुआ कि नहीं हुआ? वो भी निमित्त का कथन है। तो ज्ञानावरण कर्म को पता चलता हुआ कि अभी इंजेक्शन दिया है, अभी मेरे को मंद रूप ज्ञान को करना है, अधिक आवरण डालना है, इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज होते हैं। कार्य अपनी योग्यता से होता है और उस समय जो कोई वहां निमित्त का आरोप आता है, वो जो वहां अन्य द्रव्य का कार्य चलता है वो सहज होता है। कार्य तो अपने निश्चित समय पर होता ही है, वो निमित्त भी अपने निश्चित समय पर वहां अपने कारण से हाजिर है, किसी ने लाया हटाया ये बात नहीं हो सकती। इंद्र ने बुलाया इसीलिए इंद्र, वो गौतम वहां आया कि नहीं आया, बोलो? इंद्र ने जाकर, सौधर्म इंद्र ने जाकर वो इंद्रभूति को लाया तब तो आया कि नहीं आया? वो अपनी स्वयं की योग्यता से आया। अब भाषा वर्गणा को ज्ञान था ना कि अभी इंद्रभूति आया है, उसने दीक्षा धारण की है, अभी वो मुनिराज है, अभी मुझे दिव्य ध्वनि रूप से खिरना चाहिए। भाषा वर्गणा को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? उसको पता चला ना कि अभी मुझे खिरना चाहिए दिव्य ध्वनि रूप से। अभी तक तो भाषा वर्गणा चुप बैठी थी, अभी ओम रूप ध्वनि खिरेगी कि नहीं खिरेगी, क्या कहते हैं? भाषा वर्गणा तो जड़ है, उसको तो कुछ पता नहीं है, फिर भी उसका जो स्वयं ओम ध्वनि रूप जो परिणमन था वो अपने समय पर हुआ है, वो इंद्रभूति अपने स्वयं के कारण वहां हाजिर है, फिर भी ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है। और शास्त्र में तो निमित्त की ओर से ही कथन होते हैं, इसलिए जिसको निमित्ताधीन दृष्टि है वो अपनी दृष्टि को और पुष्ट कर लेता है शास्त्र के वचन द्वारा, क्योंकि हम जिन जिन बातों का आधार देते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता, उन्हीं शास्त्रों के वचनों को वो हमको दिखा, देखो यहाँ लिखा है कि नहीं, देखो निमित्त से कार्य हुआ कि नहीं हुआ, जब तक गंधर नहीं आया तो क्यों नहीं खीरी? क्योंकि हमें निमित्त दिखाई देते हैं और जीव की या प्रत्येक द्रव्य की जो उपादान शक्ति है उसकी निज शक्ति है वो दिखाई नहीं देती। हमने नीम का बीज बोया और हमें आम चाहिए, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमने बहुत अच्छी तरह रोज उसको पानी डाला, खर डाला, अच्छी तरह से धूप में रखा, तो ये कि नीम के जो बीज में उपादान शक्ति है वो किस रूप हो जाएगा? नीम रूप हो जाएगा। और यदि हमने आम की गुठली बोई है तो ये आम का वृक्ष बन जाएगा। तो हमने तो बीज को देखा, उसका डिसेक्शन करके देखा, अंदर कोई आम बीम कुछ नहीं देखा, तो अंदर देख के फिर उसको बोना चाहिए ना, तो ये शक्ति दिखाई देती है आपको, तो वो शक्ति उसमें है कि नहीं है? और वो दिखाई दे रही है आपको? बीज देखने से तो पता नहीं चल रहा कि इसमें से क्या उगेगा, फिर भी वो निज शक्ति उसके अंदर गर्भित है और उसी में से वो उत्पन्न होगी। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में अपनी जो कोई अनादि अनंत जो पर्यायों का क्रम है, निश्चित समय पर निश्चित पर्याय उत्पन्न होने का क्रम, उसकी वो अपनी निज उपादान शक्ति है और उसी शक्ति से वो कार्य होता है। ये जो हमने गेय से ज्ञान होता है, ये जो मान्यता है ना, देखो यहां आप निकालना पृष्ठ संख्या 63, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। एक गेय से ज्ञान नहीं होता, ये तो बात अभी हमने देख ली। अज्ञानी को तो ऐसा ही लगता है कि गेय है इसलिए ज्ञान होता है। और यदि हम जैनी होकर भी यही मान्यता रखते हैं तो हमारी मान्यता बौद्धमती जैसे हो जाएगी। देखो, ज्ञान की प्रत्येक पर्याय ज्ञान गुण का कार्य है। जानना जानना जानना, यह कार्य कहाँ हो रहा है? ज्ञान गुण में, और उसका कर्ता ज्ञान गुण है। अभी हम गुण और पर्याय की बात कर रहे हैं, कभी कभी द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से भी बात करेंगे तो यही बात होगी कि आत्मा कर्ता है और ज्ञान उसका कार्य, कार्य ने कर्म है, तो उसको कर्ता कर्म संबंध भी कहेंगे। वह उपादान कारण है। ज्ञान गुण के अलावा अन्य कोई भी इस ज्ञान पर्याय का उपादान कारण नहीं है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर हमको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर गणधर को ज्ञान हुआ और उसके कारण उसने शास्त्र की रचना की, ये बात सही है ना? क्यों नहीं सही? वाणी सुनने से ज्ञान होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं होता? हाँ, अरे वाणी तो जड़ है, जड़ के कारण जीव का परिणमन हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो कहते वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, आपको पता होगा जितना केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान से जानते हैं उसका अनंतवा भाग उनकी दिव्य ध्वनि में आता है। सुना है कभी? नहीं सुना? सुना है। जितना दिव्य ध्वनि में आता है उसका अनंतवा भाग गणधर वो सुनते हैं तो उनके ज्ञान में आता है। जितनी बातें गणधर के ज्ञान में आती है उसके अनंतवे भाग वो 12 अंग के रूप रचना होती है। अब ओरिजिनल 12 अंग कितने थे और अभी उसका कितना छोटा भाग यहाँ रह गया है, और उसको भी पढ़ने को किसको इंटरेस्ट है? क्यों? तो जितना जानता है उतने ही वचन में आए, ये कोई बात नहीं है? तो यहां क्या बात हो रही है? तो दिव्य ध्वनि सुनने से किसी को ज्ञान हुआ, यह बात नहीं है। यदि दिव्य ध्वनि से ज्ञान हो जाता तो समोचरण में कितने जीव उपस्थित रहते हैं बोलो, और कितने गति के जीव जाते हैं समोचरण में? चारों गति। हाँ, तीन पक्का? कौन से नहीं जाते? हाँ, ये नारके अपना बिल छोड़कर कहीं बाहर नहीं घूम सकते, समोचरण में कोई नारकी नहीं आते। अरे नारकी क्या, नरक की इतनी सी मिट्टी भी यहाँ कोई ले आवे ना तो यहाँ के कोसों के जीव मर जाएंगे। ये हुआ था ना, गैस कांड हुआ था कि नहीं भोपाल में? वो तो नरक की गैस नहीं थी, यही की थी। तो हम क्या देख रहे थे, समोचरण में जीव कितने होते हैं बोलो, आपको पता है समोचरण में कितने जीव रहते हैं? रहते हैं नहीं, कहाँ उपस्थित कितने जीव होते हैं? तीन गतियों के हैं ये तो हमने निश्चित किया, अब बोलो कितने हैं? मालूम नहीं है? अरे देव ही असंख्यात आते हैं, तो असंख्यात बोल दो ना, असंख्यात देव समोचरण में उपस्थित है। मनुष्य तो होते ही संख्यात है, पर्याप्त मनुष्य। हाँ, कौन? सभी मनुष्य नहीं जाते हैं, मनुष्य संख्यात होंगे उपस्थित, तिर्यंच भी संख्यात तिर्यंच वहां है, परंतु देव तो असंख्यात होते हैं। तो दिव्य ध्वनि के कारण यदि ज्ञान हो जाए तो सबको समान ज्ञान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि सम्यक तो होता है तो सबको समान होना चाहिए। किसी को सम्यक दर्शन होता है तो किसी को शायिक सम्यक दर्शन होता है, किसी को पांचवा गुण स्थान प्रकट होता है, कोई वहीं वहीं मुनिराज हो जाते हैं, संयम धारण कर लेते हैं, कोई वहीं पर बैठे बैठे केवल ज्ञानी हो जाते हैं। एक तीर्थंकर के समोचरण में अन्य अन्य भी केवली विराजमान होते हैं, वहां पर ही उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। दिव्य ध्वनि सुनने से होता तो सबको एक समान होना चाहिए था कि नहीं? इसलिए क्या सिद्ध होता है? निमित्त से कार्य नहीं होता, अपनी अपनी उपादान की योग्यता से जीव का वो परिणमन होता है। देखो, जब हम निमित्त से कार्य नहीं होता ये बात सुनते हैं तो कितने ही लोग निमित्त का ही निषेध करने लगते हैं। और निषेध करने से ये मान्यता है कि देखो हमारी तो बहुत अच्छी श्रद्धा है। क्या होता है? हमें कोई बुखार आता है तो हम कोई दवा कोई गोली कुछ नहीं लेते हैं, औषधि कुछ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जिनेन्द्र भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा है उसकी। क्या इसको सही श्रद्धा कहते हैं? होते हुए कार्य में निमित्त से कुछ नहीं होता ये निर्णय करना चाहिए। हमने बुखार के कारण हमने एक दवा की गोली खा ली और वहां बुखार हट गया आधे घंटे में, तो उसको निर्णय नहीं, ये बात थोड़ी होती है। ये जो दवा अंदर गई और ये जो बुखार कम हुआ, तो उसमें हम कैसा निर्णय करें तो वो सही निर्णय है? ये जो टैबलेट है, दवाइयाँ है, औषधियाँ हैं, उसमें और शरीर में तो अन्योन्या भाव है। शरीर की जो अवस्था गर्म रूप थी वो अभी नॉर्मल टेम्परेचर हुआ, ठंडा रूप हुआ। क्यों हुआ? अपने उपादान कारण से। और वहाँ सामने निमित्त कौन है? वो दवाइयाँ जो उसने खाई है वो निमित्त है। तो जो कार्य हुआ है वहाँ निमित्त है, फिर भी निमित्त से कुछ नहीं हुआ है, ऐसा निर्णय करना वो सही निर्णय है। लोग क्या करना चाहते हैं? निमित्त से कार्य नहीं होता ना, बस उसको निषेध कर दो, निमित्त होता ही नहीं, होता नहीं, होता ही नहीं। गुरु से ज्ञान नहीं होता है जब हमने सुना, गुरु को हटा दो, उसे कुछ नहीं होता। गुरु को बताना जाके तेरे से क्या हुआ, मेरे ज्ञान से गुण से हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये सही है? इसको कहेंगे उसको व्यवहार आचरण भी ठीक नहीं है उसका लौकिक। देखो, जिन भगवान के द्वारा हमें ये मार्ग मिला है उनके सामने तो हम कितने गदगद होकर उनकी भक्ति के भाव आते हैं कि ऐसा अलौकिक मार्ग आपने हमें बताया, धन्य हो आपकी कि आपके कारण ये मार्ग मिला। यदि आप ये नहीं मिलते बताते तो हमारा क्या होता? ख्याल में आती है बात? ऐसा विनय सहज रूप से होता है, इसको कृतज्ञता कहते हैं। और तूने क्या किया? हमने अपने ज्ञान गुण से जान लिया, ऐसे थोड़ी बताने की पद्धति होती। सही ज्ञान होने पर भी भाषा में तो और अधिक विनय हो जाता है। देखो यही प्रश्न यहां लिखा है ना, समय भी 64 पृष्ठ पर यहां प्रश्न था। पहले ऐसा बताया था कि सामने पुस्तक, पूर्व पृष्ठ में 63 में, सामने पुस्तक है इसलिए ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ, प्रकाश है इसलिए ज्ञान हुआ, अंधेरे में कैसे हो सकता था? मुंह में गुलाब जाम रखा इसलिए उसके मिठास का ज्ञान हुआ, चश्मा लगाने से ज्ञान हुआ, क्योंकि चश्मा उतारते तो कुछ नहीं दिख रहा, काला काला दिख रहा है, चश्मा लगाया तो अच्छी तरह से दिखने लगा, तो उसके कारण दिखा कि नहीं दिखा? चश्मे ने देखा कि नहीं देखा? तो चश्मा उतार कर पुस्तक पर रख दो और आप जरा नींद ले लो तो चश्मा वो देखने का कार्य कर देगा। क्यों? ऐसी ही प्रायः अनेक लोगों की मान्यता दिखाई देती है। तुम कहोगी ये सभी बातें तो प्रत्यक्ष में इसी तरह पाई जाती है, अनुभव में आती है, तो फिर हम उन्हें जरूर मानेंगे ही, तुम उनका निषेध क्यों करती हो? लोगों की ऐसी मान्यता है ना, इसे बहस इसी बातों पर चलती है। क्या तुम्हें गुलाब जाम खाए बिना ही उसकी मिठास का पता चलता है? तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में पूज्य श्री कांजी स्वामी के अनंत उपकार है, उन्हीं के उपदेश से यह मार्ग प्राप्त हुआ है, यह बात तुम ही बारंबार बताती हो, तो निमित्त से हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न है सामने वाले का। बेटी, यहां कथन का कौन निषेध कर रहा है? कथन का निषेध नहीं है, ना ही निमित्त का निषेध है। निमित्त से कार्य होता है ये मिथ्या मान्यता का निषेध है। फिर बराबर देखना, सोचना, सुनना, किस बात का निषेध हो रहा है? निमित्त से कार्य होता है इस मान्यता का निषेध हो रहा है, ना निमित्त का निषेध हो रहा है, और न ही किसी अपने गुरु के प्रति जो विनय की बात होती है उसका भी निषेध है। हम तो गलत मान्यता का निषेध कर रहे हैं। कथन निमित्त की अपेक्षा किया जाता है, परंतु कार्य तो उपादान से होता है। यह बात जानते हुए निमित्त का कथन करेंगे तो वह योग्य होगा, क्योंकि हमारे आचार्यों ने तो निमित्तों का कथन बहुत खूब किया है। कर्णान योग तो सारे निमित्तों के कथन से भरे पड़े हैं, तो क्या निमित्त का कथन ही नहीं करना है? कथन करना, परंतु सही मान्यता के साथ कथन करना, तो उसमें कोई दोष नहीं है। कार्य उपादान से होता है यह बात जानते हुए निमित्त का कथन करेंगे तो वह योग्य होगा, परंतु यदि उपादान को मानेंगे ही नहीं और निमित्त को ही कार्य का कर्ता मानेंगे तो वह मिथ्यात्व है। ख्याल में आती है बात? निमित्त का कथन करना मिथ्यात्व नहीं है, परंतु निमित्त से कार्य होता है ऐसा मानेंगे तो मिथ्यात्व है। जो कहेगा कि निमित्त होता ही नहीं, उसका ज्ञान खोटा। क्या कहा? निमित्त का ही निषेध करता है, निमित्त होता ही नहीं ऐसा जो कहता है, मानता है, उसका ज्ञान खोटा है, और जो निमित्त से कार्य होता है ऐसा मानता है उसकी श्रद्धा खोटी है। दोनों में अंतर समझ में आया? निमित्त से कार्य नहीं होता ऐसा सुनने पर कोई जीव निमित्त होता ही नहीं ऐसा उसका निषेध ही कर देता है, तो उसका ज्ञान सही नहीं है। निमित्त होता है क्योंकि जब जब कार्य होता है दोनों ही कारण विद्यमान रहते हैं। जब कार्य होता है तो अनेक कारण आ मिलते, ऐसा कथन है ना? वो अनेक कारण की चर्चा तो हम 5 समवाय में करेंगे, अभी तो हम 2 ही कारण देख रहे हैं। कौन से 2? निमित्त और उपादान। देखो आगे पढ़ते हैं। हमें तो ऐसे गुरु मिले, जब यहां गुरु कहा ये तो मुनिराज की बात नहीं है, जिनको हम विद्या गुरु कहते हैं, जिनके पास से हमें आध्यात्मिक जो उपदेश मिला है, ऐसे विद्या गुरु मिले कि उन्होंने बार बार कहा था। ये किस गुरु की बात चल रही है ये पता है? हाँ, कांजी स्वामी, जिनको गुरुदेव कहते हैं, स्वामी जी कहते रहे हम, कि उन्होंने बारंबार कहा था, अरे जीवो, तुम्हें यह जो ज्ञान हो रहा है वह तुम्हारे उपादान से हो रहा है। यह जो उपदेश, यह वाणी है, वह तो भाषा वर्गणा का कार्य है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं। जिस गुरु ने 45-45 वर्ष उपदेश दिया था, हे शिष्य, गुरु से ज्ञान नहीं होता, तेरी निमित्ताधीन दृष्टि छोड़। दृष्टि यानी मान्यता। यहां पर निमित्त से कार्य होता है यह मान्यता छोड़, इसको दृष्टि कहेंगे, बुद्धि कहेंगे। तू स्वयं स्वतः सिद्ध परमात्मा है, इस बात को नक्की कर, ऐसा निर्णय कर। बारंबार कहते ना, मैं स्वयं परमात्मा हूं, ऐसा पहले निश्चित कर। हूं परमात्मा छू, एम पहला निर्णय कर, बारंबार कहते थे। ऐसा निर्णय करने वाला पर्याय में परमात्मा हो जाता है। तो परमात्मा हूं ना, फिर और होने की बात कहां से आई? स्वभाव रूप में परमात्मा हूं, और इस बात का हम पर्याय में स्वीकार करते हैं तो पर्याय में भी परमात्मा बन जाते। ऐसे गुरु के अनंत उपकार को स्मरण न करे वह शिष्य कैसा? आगे भी हम बात देखते हैं। देखो, ये जो सारे निमित्तों के कथन आते हैं, कर्म सिद्धांत है, सारे निमित्त की परिभाषा में आते हैं, फिर भी जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध बताए जाते हैं, कैसे पहचानना उसको? 2 द्रव्यों का मिलकर कथन हो रहा है। जीव ने कर्म को उपशमित किया, या जीव ने कर्म का क्षय कर दिया, कर्म के उदय के कारण जीव को क्रोध आया, तो ये दो द्रव्यों के मिलकर कथन है, तो वहां क्या समझना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाला कथन है, ये व्यवहार कथन है, आरोपित कथन है, उपचार कथन है, वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है, फिर भी निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये कथन किया है। ख्याल में आती बात, निमित्त होता है तो उसका ज्ञान भी किया जाता है। यदि होते हुए वस्तु का हम ज्ञान का निषेध करेंगे, निमित्त का निषेध करेंगे, तो ज्ञान तो स्व पर प्रकाशक है, तो निमित्त पर वस्तु है, यदि उसको ही हम होता ही नहीं ऐसा कहेंगे तो वो ज्ञान सही नहीं होगा, वो ज्ञान भी झूठा हो जाएगा, खोटा हो जाएगा। तो उसका सही जो अर्थ लगाना है ये हमें समझना चाहिए। देखो अभी हम सम्यक दर्शन रूप कार्य पर उसको घटित करेंगे। सम्यक दर्शन होता है किसी जीव को, तो वहां पहले हम क्यों होता है उसको देखेंगे। सम्यक दर्शन कार्य हुआ, किसी कार्य में दो कारण लगते हैं, हमें निश्चित करना है वहां उपादान कारण कौन है और निमित्त कारण कौन है। पीछे कहेंगे कोई भाई आपके, हाँ, सम्यक दर्शन कार्य के दो कारण कौन से है। सम्यक दर्शन कार्य हुआ, पहले हमें उसके दो नाम बताओ। सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ है, उस कार्य के पहले दो नाम बताओ। किसी भी कार्य के दो कौन से नाम होते हैं, हाँ, नैमित्तिक और उपादेय, बराबर है। तो हमारा कार्य कौन सा हुआ है, सम्यक दर्शन, तो उसको हम उपादेय रूप कहकर उसका कारण उपादान कारण कौन है उसकी चर्चा करेंगे। तो सम्यक दर्शन जो कार्य हुआ है उसका उपादान कारण कौन है, सच्चे देव गुरु के कुदेव, हाँ, सच्चे देव गुरु शास्त्र उसका उपादान कारण है कि खोटे कुदेव कुदेव को शास्त्र हो गए, दोनों ही नहीं है। अच्छा तो कौन है बोलो, जीव स्वयं, थोड़ा और हम स्पेसिफिक विशेष, हाँ बोलो, हाँ जीव का श्रद्धा गुण, क्यों ये श्रद्धा गुण में कार्य हुआ है, श्रद्धा गुण स्वयं सम्यक दर्शन रूप कार्य रूप से परिणमित हुआ है, तो उसका उपादान कारण कौन है, श्रद्धा गुण। अब इसका निमित्त कारण कौन है, एक एक कोई बता, हाँ बताओ क्या कहते हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र और देशना लब्धि। अच्छा एक ने कहा सच्चे देव गुरु शास्त्र, एक ने कहा देशना लब्धि, आप बताओ, हाँ आपने कहा कर्मों का क्षय उपशम वगैरह, तो हमें ये सब अलग अलग कारण मिल गए। अभी इन कारण जो है ना ये सारे निमित्त ही है ना, ये नक्की है। अच्छा इन निमित्तों को हम दो में विभाजित करेंगे, निमित्तों के ही दो प्रकार बताएंगे, एक होता है अंतरंग निमित्त और एक होता है बहिरंग निमित्त। सुना है कभी, अंतरंग यानी अंदर वाला, बहिरंग यानी बाह्य वाला, बराबर है कि नहीं। अंतरंग निमित्त किसको कहना, कर्मों की अवस्था को, और बहिरंग, क्या यह सही परिभाषा है अंतरंग निमित्त की। जीव और पुद्गल गमन करते हैं अपने स्वयं की उपादान से, और वहां निमित्त कौन है, धर्मद्रव्य, वहां अंतरंग निमित्त कौन है, क्रियावती शक्ति, तो उपादान है, क्योंकि हमने अंतरंग निमित्त की परिभाषा सही नहीं जानी। अंतरंग निमित्त किसके कहते हैं, किसे कहते हैं, कोई कहेगा यहां पर, अंतरंग निमित्त उसे कहते हैं जो नियम रूप निमित्त होता है। क्या कहा, जो नियम रूप निमित्त होता है, यानी उस कार्य में नियम से जो पाया जाता है उसको कहेंगे अंतरंग निमित्त। जैसे अभी हम जो सम्यक दर्शन ऊपर घटित कर रहे हैं, जब जब सम्यक दर्शन रूप कार्य हो रहा है तो वहां कर्मों की कौन सी अवस्था है, तो दर्शन मोहिनी का जो है अनुदय है, क्या है, उदय नहीं है, तो उदय नहीं है, किसी का उपशम होगा, किसी का क्षोपशम होगा और किसी का क्षय होगा। फिर भी तीनों में कॉमन क्या है, साधारण सामान्य बात क्या है, उदय नहीं हो रहा है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय नहीं पाया जा रहा, ये सब में सामान्य रूप से विद्यमान है। तो जब जब सम्यक दर्शन किसी जीव को होता है उसी समय इन विशिष्ट कर्मों का अनुदय पाया जाता है। बात सही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, पहले निमित्त आया और दो साल के बाद नैमित्तिक कार्य हुआ, ये बात सही है कि नहीं सही है? निमित्त नैमित्तिक संबंध एक ही समय पुरता है। क्या कहा? उसको कहते काल प्रत्याशक्ति। क्या कहा? ये क्या होती है काल प्रत्याशक्ति? नहीं मालूम? प्रत्याशक्ति ने नजदीकता, एक ही समय में दो द्रव्यों के अलग अलग अपने अपने कार्य है और उनमें जो निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई देता है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय पुरता है, क्योंकि कार्य एक समय का है तो निमित्त भी उसी समय में हाजिर है। क्या कहा? जिस समय कार्य हो रहा है उसी समय निमित्त कहेंगे कि एक दो चार साल पहले निमित्त कहेंगे? उसी समय में। तो यहाँ नियम रूप निमित्त जो है उसी समय में विद्यमान होना चाहिए। तो जिस समय समय दर्शन प्राप्त हुआ है उसी समय नियम रूप अगर हम निमित्त को देखेंगे तो कर्म की अवस्था को देखना पड़ेगा। दर्शन मोनीय और अनंतानुबंधी का उदय का अभाव हुआ है, अनुदय हुआ है, उसको हम कहेंगे नियम रूप निमित्त, ये उसको कहेंगे अंतरंग निमित्त। अभी हम बहिरंग निमित्तों की बात करेंगे। बहिरंग निमित्त ने अन्य अन्य जीवों में अन्य अन्य निमित्त पाए जाएंगे। तो जैसा शास्त्र में कथन आता है कि देवों में जो दूसरे देवों की जो रिद्धि होती है उसको देख कर किसी को होता है, किसी को जिनबिंब देख कर सम्यक दर्शन होता है, नारकियों में तो वेदना के कारण सम्यक दर्शन होता है। तो वेदना से हो जाए तभी भी हम यहाँ कुछ काट बाट करते तो हो जाएगा? ऐसा नहीं है। वेदना के काल में वो जीव तत्वों का चिंतन चलता है, अंतरोन्मुख उसकी परिणति होती है और उसको सम्यक दर्शन होता है। वेदना के कारण डायरेक्ट उसको सम्यक दर्शन हुआ ऐसा नहीं है, और वो तो उसकी पूर्व अवस्था है, फिर भी बताने के लिए उसको भी हम निमित्त में गिनते हैं। जब हम कहते देशना को निमित्त कहा तो देशना कब प्राप्त हुई और सम्यक दर्शन कब हो गया? देशना की प्राप्ति जो हुई थी वो उसकी पूर्व अवस्था है और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वो तो बाद में हुआ, फिर भी उसको निमित्त रूप से हम गिनते हैं, क्योंकि ज्ञानी की देशना के बिना सम्यक दर्शन रूपी कार्य नहीं होता, भले वो देशना इस भव की हो या पूर्व भव की भी हो सकती है। ये देशना लब्धि क्या होती है? कौन से गुण की पर्याय है बोलो? देशना लब्धि किस गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की। एक एक गुण बताओ ना भाई। ज्ञान गुण की। क्यों? उन्होंने देशना दी, दिव्य ध्वनि सुनी, वो हमारे ज्ञान गुण की थोड़ी पर्याय है। हाँ, लब्धि की बात करें, हमने देशना नहीं पूछा, देशना लब्धि पूछा। लब्धि किसको हुआ, प्राप्ति किसको हुआ? जो जानकर जिसने वो सुना समझा उसको हम कहेंगे देशना लब्धि, वो लब्धि है। वो उपदेश चल रहा है उसको लब्धि नहीं कहेंगे, उसको तो देशना कहेंगे हम। तो ये जो देशना लब्धि वो ज्ञान की पर्याय, तो देशना को भी सम्यक दर्शन का जो निमित्त कहते हैं वो तो उसकी पूर्व अवस्था है, फिर भी कह देते हैं, परंतु उसको ये सारे ही जो कहे वो बहिरंग निमित्त कहते हैं। अन्य अन्य जीवों को अन्य अन्य कारणों के कारण, सम्यक्त्व के भी प्रकार आते हैं ना, अज्ञा सम्यक्त्व है, बीज सम्यक्त्व है, मार्ग सम्यक्त्व है। मुनिराज को देखते हैं, उनकी सारी जो उनकी रूटीन देखते हैं और जीव को उसका अहोभाव आता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। भगवान की आज्ञा है मानकर उसको विश्वास करता है, सम्यक दर्शन होता है। अरे कर्णान योग के गणित का अभ्यास करता है, उसमें सूक्ष्म उपयोग लगता है और वहां से हटकर अपने आत्मा पर आता है तो उसको बीज सम्यक्त होता है। ये सारे बहिरंग कारण है। बहिरंग कारण हम कहेंगे उसको वेरिएबल कारण, बाह्य अन्य अन्य। और अंतरंग निमित्त है ने? नियम रूप निमित्त। अंतरंग निमित्त किसके कहना? नियम रूप। जैसे जीव और पुद्गल गमन करते हैं तो सबके लिए जो नियम रूप निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य, तो उसको हम अंतरंग निमित्त कहेंगे। हाँ, तो आप कैसे आए, चलकर आए कि गाड़ी से आए? तो हम कहेंगे वो उसके बहिरंग निमित्त में ले लेंगे उसको। पुद्गल पुद्गल के कारण आया और जीव जीव के कारण आया। फिर भी हम कहेंगे हम ट्रेन से आए, हम प्लेन से आए, हम गाड़ी से आए, तो उसको क्या कहेंगे? वो अलग अलग निमित्त हम बता देंगे। तो ऐसे हमने निमित्त के दो भेद देखे, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग निमित्त का अर्थ क्या देखा था? नियम रूप निमित्त। और बहिरंग निमित्त अलग अलग जीवों में जो अलग अलग हो सकते हैं उसको हम बहिरंग निमित्त कहेंगे। ये देव शास्त्र गुरु आदि को जो हमने सच्चे देव गुरु शास्त्र, ये सारे ही बहिरंग निमित्त में आ जाएंगे। और कर्मों की अवस्था जो है सम्यक दर्शन के लिए हो, सर्वत्र कर्म को अंतरंग निमित्त में नहीं लिया है। जो नियम रूप निमित्त होता है उसी को अंतरंग निमित्त कहते हैं। निमित्त के और भी दो विभाजन है अलग प्रकार से, एक होता है प्रेरक और एक होता है उदासीन। उदासीन यानी मुंह लटका के बैठा है, उसको उदासीन नहीं कहते। जैसे धर्म द्रव्यवत भी कहा है ना, उदासीन निमित्त क्या अर्थ होता है और प्रेरक किसको कहेंगे, पता है किसी को? बोलो। हाँ, जीव और जो पुद्गल है कैसे है? इच्छावान और क्रियावान जो द्रव्य है, निमित्त तो निमित्त ही होता है, कार्य में कुछ नहीं करता है। ऐसा नहीं कि इच्छा वाला जरा इच्छा से पुश करता है और क्रियावान है तो कुछ और उसको मदद करता होगा, ऐसी बात नहीं है। फिर भी द्रव्यों में भेद करने के लिए, निमित्तों में जो अलग अलग भेद बताने के लिए, इच्छावान और क्रियावान जो द्रव्य है उनको कहेंगे प्रेरक निमित्त। ये इच्छावान द्रव्य कौन कौन से है? हाँ, जीव द्रव्य। तो महावीर भगवान की वाणी छूटी तो इच्छा थी तो छूटी कि नहीं छूटी? महावीर भगवान की इच्छा से वाणी छूटी कि नहीं छूटी? नहीं छूटी। क्यों नहीं छूटी? हाँ, क्या कहते हैं जरा जोर से बोलो। हाँ, उनके अंदर इच्छा ही नहीं थी क्योंकि वो पूर्ण वितराग है। पूर्ण वितरागी भगवान की इच्छा नहीं होते, उनकी तो नहीं इच्छा से वाणी छूटती, हमारी तो छूटती है कि नहीं छूटती? हम वितरागी कहाँ है, हमारी वाणी इच्छा से छूटती है कि नहीं छूटती? तो कहते हैं नहीं छूटती। फिर भी ये जो निमित्त रूप से जो इच्छावान द्रव्य है उसको क्या कहेंगे? प्रेरक निमित्त कहेंगे। क्रियावान जो है, जैसे ध्वजा लहराती है तो वायु से ध्वजा लहराती है कि नहीं रहता है? हवा से ध्वजा लहराती है, वो हवा को कौन सा निमित्त कहेंगे? प्रेरक निमित्त। क्यों? वो क्रियावान द्रव्य। अध्यापक ने शिष्यों को पढ़ाया कैसा निमित्त कहेंगे? प्रेरक। क्यों? अध्यापक है, वो इच्छावान द्रव्य है। इस तरह से हमें इसमें विचार करना है और उसके भेदों को जानना है। अब अपना समय हो चुका, यही रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान की जय।